हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि कुछ बोल सकूँ। तो कल बलराम जयंती है, इसलिए वंशी वदन प्रभु के आदेश के अनुसार बलराम जयंती के अवसर पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो हम बलराम जी के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सो कैन राइट BALRAM। सबसे पहले बी है बिविल्डरिंग। ये बलराम जी का गुण है कि उनकी लीला पूरी तरह से मोह में डाल देती है। अगर कोई पाश्चात्य देश में इसने बलराम जी का नाम सुना नहीं है, उसको आप बुलाते हैं बलराम जयंती के उत्सव को, उसको बोले क्या उत्सव है, भगवान के भाई भाई का जन्मदिन है, तो उसको समझेगा नहीं। एक तो भगवान का जन्मदिन होता है क्या, फिर भगवान का भाई भी होता है और उनका भी जन्मदिन होता है। ये बर्थडे के अलग अलग कंसेप्शंस है। अगर हम बर्थडे बोलते हैं तो अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई बुद्धिज़्म है किसी का बर्थडे, तो नथिंग एग्जिस्ट, सो हुज़ बर्थडे इज़ इट। अगर ताओइज़्म है, ताओइज़्म में एवरीथिंग इज़ वन, तो टुडे इज़ एवरीवन्स बर्थडे। अगर इम्पर्सनलिज़्म बोलते हैं तो इम्पर्सनलिज़्म में एवरीथिंग इज़ वन, सो एवरीडे इज़ अ बर्थडे। तो ऐसे अलग अलग तरह से अगर मॉडर्न साइंस में आएगा, देर इज़ नो बर्थ एंड देर इज़ नो डेथ, सो व्हाट इज़ अ बर्थडे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। पर ये लोगों को समझना बड़ा मुश्किल आता है कि अगर भगवान है तो भगवान के भाई कहाँ से है। पर हम जानते हैं कि भगवान सब प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, तो उसमें वो भ्रातृप्रेम साक्ष्य रस में भ्रातृप्रेम का भी आस्वादन बलराम जी के साथ करते हैं। और साथ साथ ठीक है, मान लीजिए बलराम जी एक व्यक्ति है, पर उनकी लीलाएं भी बड़ी मोहित करने वाली है। कौन कौन से बलराम जी के कार्य मोह में डाल देते हैं? यस किशन प्रभु, हरे कृष्ण। ऐसा लगता है कि नशे में थे और नशे में यमुना का पवन एक तरह से अत्याचार किया, और उससे भी एकदम ग्राफिक। यस संगीतान प्रभु, हाँ दुर्योधन गुरु। दुर्योधन जो कि भगवान के भक्तों का पूरी तरह से विरोध करने वाला व्यक्ति था, उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था, और उनके गुरु बन गए। तो इस्कॉन में कुछ भक्तों का नाम होता है दुर्योधन दास, नहीं नॉट दुर्योधन दास, दुर्योधन गुरुदास। वास्तव में जब बलराम जी ने दुर्योधन को ट्रेनिंग दिया था, दुर्योधन का नाम सुयोधन था, पर बाद में उसने उतना दुराचार किया तो उसका नाम बदल गया और सुयोधन से दुर्योधन हो गया, तो इसलिए दुर्योधन गुरु। तो ये और कोई बलराम जी की लीला है जो मोह में डाल देती है? ये श्री हरि प्रभु, हाँ शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, और भगवान शास्त्र में बताते हैं, इंद्र की कथा में हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण का की संपत्ति भी छीनने का प्रयास करता है, कितना पाप लगता है उसको, और भगवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, और ब्राह्मण भी नहीं, जो ब्राह्मण व्यासासन पे बैठ के प्रवचन दे रहा था, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर दी भगवान ने। और कोई? यस माधव गोपाल प्रभु, हाँ वो आए है भगवान है, आए है विनाश है जो दुष्कृताम के लिए, पर जब विनाश करना है तो तीर्थ यात्रा चले गए विनाश करने की जगह पे। और कोई ये जुगल की चलो, हाँ यह जो सुभद्रा का हरण कर लिया अर्जुन ने, तो वो अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे। ये श्यामान गौर, हाँ उन्होंने भी रासलीला की गोपियों के साथ। ये विवेकानंद रू, हाँ वो उनके पोते का विवाह, पोती का विवाह था, और विवाह के समारोह के बीच में गुस्सा आ गया, और गुस्से से उन्होंने गदा उठा ली और रुक्मी को एक सिर पे मार डाला, खत्म, नॉकआउट ब्लो, वहीं पे उसका मृत्यु हो गया। तो कैसे ऐसे ऐसे लगता है कि बलराम जी शॉर्ट टेम्पर्ड है, भगवान को गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ इधर से उधर चले गए, जन्मी हुए विचित्र है एकदम, ऐसे अनेक लीला है। ओके वन लास्ट, एनीवन हु इज नॉट आंसर्ड टिल नाउ, बोलिए। रेणुकासुर का उसने उन्होंने रेणुकासुर को मोहित कर दिया। या दैट्स ट्रू। तो बलराम जी के कार्य सही में मोहित करने वाले, खास करके दुर्योधन को शिक्षा देना या फिर रासलीला करना। तो जीव गोस्वामी बताते हैं उनके संदर्भों में कि द एब्सोल्यूट ट्रूथ मस्ट हैव इनकंसीवेबल एट्रीब्यूट्स, कि जो परम सत्य है उसके अचिंत्य गुण होने चाहिए, नहीं तो वो परम सत्य नहीं कहलाता है। मतलब परम सत्य के कार्यकलाप, परम सत्य के बारे में ऐसे पहलू होने चाहिए कि जो हमारे समझ के बाहर है। अगर परम सत्य के बारे में हम सब कुछ समझ जाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि जो परम सत्य को समझ रही है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। इफ़ आवर इंटेलिजेंस कैन अंडरस्टैंड गॉड देन आवर इंटेलिजेंस बिकम्स गॉड, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस बिकम्स ग्रेटर देन गॉड। तो इसीलिए परम सत्य में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे गुण या ऐसे कार्य जो हम समझ न सके। और कृष्ण के बारे में भी कुछ ऐसे कार्य हैं, पर खास करके बलराम जी के व्यक्तित्व में दिखाते हैं कि हम मोह में पड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के जीवन से भी एक लीला है। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद के दो वरिष्ठ शिष्यों में वाद विवाद हो गया, जमुना माता जी और मधुद्वीष प्रभु। तो मधुद्वीष प्रभु शास्त्रों के आधार पर कह रहे थे कि कृष्ण और बलराम में एक ही फ़र्क है। क्या है उनका फ़र्क? उनका वर्ण। जो कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं, जैसे जल से भरा हुआ बादल होता है उसके समान उनका वर्ण है। और जो बलराम जी का वर्ण है वो श्वेत है, ऐसे समर गर्मी के मौसम में जब बादल आते हैं तो सफ़ेद होते हैं, तो बादलों में दोनों भगवान का रंग दिखता है। तो बोले थे कि उनका एक ही फ़र्क है उनके वर्ण में। तो जमुना माता जी बोली नहीं, भगवान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी के स्वामी हैं, राधा रानी के भोक्ता है, बलराम जी नहीं है। बोले नहीं, एक ही फ़र्क है उन दोनों में कि वर्ण का। बोले तुम लीला देखो, बलराम जी राधा रानी के साथ लीला नहीं करते हैं। तो बहस बढ़ गई। तो फिर वो वहाँ पे सब वरिष्ठ भक्त थे प्रभुपाद जी के, एक तमाल कृष्ण महाराज उनके पास गए थे। तमाल कृष्ण महाराज दोनों की बात सुने, तमाल कृष्ण महाराज भी बिविल्डर्ड हो गए, उनको भी समझाने क्या किया जाए। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को उन्होंने सुनाया। तो प्रभुपाद जी यमुना माता जी कह रही है, मधुद्वीष प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम में एक ही फ़र्क है उनके वर्ण का। प्रभुपाद जी बोले वो सही है, पर यमुना माता जी कह रहे हैं कि सिर्फ राधा रानी के ही के भोक्ता, सिर्फ कृष्ण ही राधा रानी के भोक्ता है, बलराम जी नहीं। प्रभुपाद जी वो सही है, पर प्रभुपाद जी ये दोनों सही नहीं हो सकता है एक समय। प्रभुपाद जी बोले वो सही है। तुम्हारे किसी महाराज वहाँ पर बिबिल्डर हो गए वापस मौजूद, पर प्रभुपाद जी फिर सही क्या है वो फैसला तुम करो। तो प्रभुपाद जी इस थोड़े ह्यूमरस पद से ये बताना चाह रहे थे कि जो हम हमारे भौतिक तर्क वितर्क है वो आध्यात्मिक व्यक्तियों पे लगा नहीं सकते। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा है बलराम जी और राधा रानी में क्या संबंध है, तो प्रभुपाद जी बोले एब्सर्ड क्वेश्चन, ये व्यर्थ प्रश्न है, अर्थहीन प्रश्न है। तो इसीलिए जब हमारा तर्क वितर्क लॉजिक है वो हम तत्वज्ञान पे लगा सकते हैं, और जहाँ जब लीला आती है तो जहाँ तक आचार्यों ने उस पर लॉजिक लगाया है उतना हम लगा सकते हैं, पर उसके बाद में हम सिर्फ उसको रिलिश करते हैं, उसका सिर्फ आनंद आस्वादन करते हैं। तो बलराम जी वो कलिंग का राजा दांत दिखा रहा था और भगवान ने उसके दांत तोड़ दिए, तो भक्त हंसते हैं, वो सिर्फ उसमें आनंद आस्वादन करना है, उसको कुछ एनालाइज नहीं करना है। ओके जब खास करके हम देखते हैं कि जब प्रेम होता है तो एनालिसिस नहीं होता है। ऐसे कोई किसी हीरो का मूवी में कोई हीरो का फ़ैन है और फिर वो हीरो जब लड़ाई करता है, एक हीरो 10-15 लोगों को पीट रहा है, उसमें क्या लॉजिक है, कैसे संभव है ये, पर उसमें लॉजिक नहीं होता है, उसमें मज़ा आ रहा है, इसको पीट रहा है वो मज़ा देखते हैं। तो जब प्रेम होता है तो एनालिसिस नहीं होता है, और एनालिसिस अगर करते हैं आचार्य वो हमें और रस का आस्वादन बढ़ाने के लिए होता है, पर अगर कोई संशय होता है तो वहाँ पे एनालिसिस नहीं होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि बलराम जी हमें उनके कार्यों से दिखाते हैं कि हम तर्क वितर्क से उनको समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ वी हैव टू रिलिश हिज पास्ट टाइम्स, दैट्स ऑल। पर फिर भी हम हम थोड़ा बहुत हमारे आचार्य ने जितना बताया उसके अनुसार थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उनके बारे में। तो जो ए है ये एक लैटिन वर्ड है, उसको कहते हैं, ये वर्ड सत्यराज प्रभु बलराम जी के लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मीन्स अनदर ईगो ऑफ द सेम पर्सन, लैटिन वर्ड है। तो वो कहते हैं कि बलराम इज़ द ऑल्टर ईगो ऑफ कृष्णा और नित्यानंद प्रभु इज द ऑल्टर ईगो ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ऑल्टर ईगो यानी कि वही व्यक्ति पर अलग व्यक्तित्व, सेम पर्सन बट डिफरेंट पर्सनैलिटी, व्यक्ति ऑल्टर ALTER EGO ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी होती है, स्किजोफ्रेनिया हो गया ऐसे कुछ, तो क्या होता है वो दो व्यक्तित्व के समान कार्य करता है, कभी एक व्यक्ति के समान कभी दूसरे व्यक्ति के समान। तो ऐसे यस प्रभु लाउडली लाउडली स्प्लिट पर्सनैलिटी वही बोला मैं, स्किजोफ्रेनिया होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, वेरी गुड। सो स्प्लिट पर्सनैलिटी में ऐसे एक ऐसे कई पिक्चर होते हैं, नॉवल होते हैं, इसमें से दिखाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस नॉवल है वेस्ट में, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। जो डॉक्टर जेकिल था वो बहुत ही करुणामय व्यक्ति था, ऐसा आपको बड़े प्रेम से दवाई देता था, ठीक करता था। जो मिस्टर हाइड था वो बड़ा बेरहम गुनहगार था और एक ही व्यक्ति था। दिन के समय उसका व्यक्तित्व डॉक्टर जेकिल जैसा था और रात के समय उसका व्यक्तित्व मिस्टर हाइड जैसा था, एक ही व्यक्ति। तो वो उसको कोई मानसिक विकार था उसके अनुसार होता था। तो वैसे ही भगवान सब रसों का आस्वादन करते हैं, तो भगवान ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का भी आस्वादन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि बलराम जी भगवान को पांचों रसों में सेवा करते हैं। प्रिडोमिनेंट है साख्य रस, इसमें साधारण लीला है, और वात्सल्य रस में कैसे है, बड़े भाई के रूप में संरक्षण करते हैं भगवान के। फिर दास्य रस में अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं उनके, बस वो शांत रस में आता है। उनके अलग अलग लीला है, कभी भगवान उनकी सेवा करते हैं, कभी वे भगवान की सेवा करते हैं। और फिर माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में, तो इस तरह से सब रसों में सेवा करते हैं। पर खास करके बलराम का जो व्यक्तित्व है कि बलराम भगवान के बड़े भाई हैं, तो इसलिए एक तरह से उनका पोजीशन थोड़ा अथॉरिटेटिव है। तो कृष्णा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड देन आई विल ट्राई ट्रांसलेट। कृष्णा एंजॉयज अ स्पेशल रसा बाय हैविंग हिज ओन एक्सपेंशन अपोज हिज व्यूज एंड एक्ट इन अ वे अपोजिट टू हिज प्लान। तो जो भगवान कर रहे हैं उसके विरोध में कार्य करते हैं बलराम जी, और फिर भगवान उनको मना लेते हैं, या कैसे तो भगवान चीज सब चीज़ संभाल लेते हैं। भगवान का विरोध करना है तो कौन विरोध कर सकता है। तो भगवान इस प्रकार से एक अलग रस आस्वादन करते हैं इसमें, तो इसीलिए उनको ऑल्टर ईगो कहा गया है। तो कौन से लीलाएं हैं जब बलराम जी ने भगवान का विरोध किया? यस, सुभद्रा का हरण। तो बलराम जी उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए थे अर्जुन पे, भगवान उनके वास्तव में पैर पड़ गए, बोले कि नहीं, सुभद्रा की इच्छा थी कि उसका विवाह अर्जुन से हो। तो फिर बलराम जी फिर शांत हो गए। और कोई लीला में उन्होंने विरोध किया? यस, माधव गोपाल प्रभु, भगवान पांडव जब, अच्छा मिट्टी खा रहे थे, तो बलराम जी ने यशोदा माई को जाके बताया कि देखो कृष्णा ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। तो फिर भगवान को मुंह खोलने को, भगवान ने बोला मैंने मिट्टी नहीं खाई है, नहीं खाई है। तो क्या तुम्हारे बड़े भाई झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वो तो हमेशा झूठ बोलते। अच्छा, बलराम जी को गुस्सा आ गया, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुँह खोलने को लगाया, मुँह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो वास्तव में भगवान ने मिट्टी खाई या नहीं खाई? अच्छा, तो इसका जवाब इस पर निर्भर है कि आप किसके पार्टी में हो, कृष्ण के या बलराम के। अगर हम बलराम के पार्टी में है तो भगवान ने खाई, कृष्ण के पार्टी में है तो नहीं खाई। और कोई लीला में भगवान का विरोध करते हैं बलराम जी? यस कपिल प्रभु, हाँ हाँ यस, दोनों समय वो अपने तीर्थ यात्रा से कुछ जगह गए। जब आए तो लगभग पूरा युद्ध खत्म हो गया था, सिर्फ भीम और दुर्योधन में युद्ध बाकी था। तो सबसे पहले वे आए और उन्होंने दोनों को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जहाँ तक स्किल प्रतिभा का सवाल है, वहाँ पर दुर्योधन का वर्चस्व है, और जहाँ तक शक्ति का सवाल है, भीम का वर्चस्व है। तो इसीलिए आप दोनों में जो युद्ध होगा वो अनिर्णय होगा, उसमें कोई जीतेगा नहीं, तो इसलिए युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। तो तभी कृष्ण भगवान पूरे शांत थे, कुछ बोले नहीं, युधिष्ठिर भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हम बलराम जी को नाराज़ नहीं करना है, बिल्कुल शांत बने रहे वो। और फिर तभी बाद में चले गए, और जब बाद में आए तो भीम ने उनके पैर के गांजे क्या जांघे पर प्रहार किया था, तो फिर उससे वो बड़े क्रोधित हो गए, वापस उन पर आक्रमण करने वाले थे। तब भगवान ने उनको वापस मनाया कि नहीं नहीं नहीं, कि उन्होंने इतना सारा अत्याचार किया है तो ये उचित ही है। तो और कोई समय है जब उन्होंने विरोध किया भगवान का? यस हाँ, वेरी गुड एग्जांपल। जब रुक्मी को मार डाला तो फिर भगवान अभी धर्म संकट में आ गए कि अगर वे कुछ उस कार्य का सराहना करते हैं तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएगी, और वो कार्य का खंडन करते हैं तो बलराम जी नाराज हो गए, तो भगवान चुप बैठे रहे। तो भगवान यदि भी भगवान है तो उनको भी रिलेशनशिप संभालने पड़ते और रिलेशनशिप संभालने के लिए बड़े ध्यानपूर्वक कार्य करना पड़ता है। तो हम तो भगवान के छोटे से अंश हैं, तो हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये और फिर वैसे ही हम देखते हैं कि वही भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो यहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु कई बार भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कहाँ का? कई उदाहरण ऐसे फेमस उदाहरण है। यस प्रमोद प्रभु, एग्जैक्टली मैं बोला था कि आप पूरी में क्यों रह रहे हो, आप बंगाल में जाओ, वहाँ प्रचार करो, और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, फिर भी वे आ गए। नॉट आंसर। यस योगेश प्रभु, यस सन्यास दंडे को तोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं भगवान को मेरे हृदय में उठाता हूँ और वो भगवान तुम उनके हाथ में उठा रहे, तो बड़ा अत्याचार है, तोड़ दिया उन्होंने उसको। और फिर को और कोई लीला? यस प्रेम निवास प्रभु, हाँ एग्जैक्टली उनको बोला कि वृंदावन जा रहे हैं, और फिर वो बच्चों को बता दिया, कहानी बता दी कि इनको बोलो कि वृंदावन का रास्ता इधर है। तो तीनों समय में, और कोई समय है? हाँ, तभी थोड़ा पैसिफिस्ट हो गए, कृष्ण आक्रमण करने वाले थे, तब उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाके थोड़ा समझौता करने का प्रयास करता हूँ। यस संगीता प्रभु, हाँ हाँ हिंदी 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 जोर से। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया कि व्यासदेव का जो उनकी माला थी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को डाल दी। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं में एक से वन पॉइंट फॉर वी गो है कि हर बार बलराम जी चैतन्य महाप्रभु का हृदय जानते थे, और इसलिए यद्यपि बलराम जी से विरोध से कार्य करते हैं, मतलब जो भगवान कह रहे हैं उसके विरोध में जाते हैं, पर उनके वैसे भाव से भगवान को प्रसन्नता होती है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि आप पुरी में रहो, पर वापस आप बंगाल में रहो, वो पुरी में आते हैं, तो वैसे कार्य से भगवान को आनंद होता है, इसलिए वो वैसा करते हैं। जैसे कि कृष्ण लीला में, सत्य भामा द्वारका लीला में कभी कभी भगवान को डांटती है, जटिला कुटिला भगवान को डांटते हैं, तो भगवान अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं। तो वैसे ही जब उनका विरोध करते हैं बलराम जी, और फिर वो भगवान उस मामले को सुलझा लेते हैं, तो उससे भी एक अलग रस का आस्वादन करते हैं भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले तीन प्रकार के सेवक है, तो नित्यानंद जी टॉप क्लास है, कि वो मन जानते हैं, उत्तमश चिंतितम कुर्यात प्रोक्तकारी च मध्यमा, जो चैतन्य महाप्रभु टॉप क्लास के सर्वेंट, इसलिए मन जानते हैं और अकॉर्डिंगली वो कार्य करते हैं, जिससे कि भगवान के रस का आस्वादन और बढ़े। तो इस तरह से जो है वो भगवान के ही एक अचिंत्य भेदाभेद तत्व से एक विस्तारित रूप है, पर वो भगवान ही है और अलग तरह से कार्य करते हैं। और ऑफकोर्स हम जानते हैं कि यही भगवान के पहले विस्तार है, और सभी विष्णु, सभी नारायण, सभी अवतार बाद में आते हैं। तो इसलिए ये प्राथमिक अवतार, प्राथमिक विस्तार है भगवान के। और फिर एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अपोजिशन? हाँ, लक्ष्मण की लीला में भी इस वजह प्रभु। तब बाद में उसी वृक्ष को भगवान मार, बलराम जी मार डालते हैं। पहले बोलते हैं कि उसके बाल भी नहीं काटने चाहिए, और बाद में उसी को मार डालते हैं भगवान बलराम जी। तो बलराम का बड़ा दिव्य कार्य होता है। लक्ष्मण के रूप में कैसे विरोध करते हैं? अच्छा, लक्ष्मण के भाव में मोरलेस और थोड़े सेवा भाव है उनका, सर्वेंट है। थोड़ा बहुत विरोध करते हैं जब सीता का बोलते हैं कि आप जंगल में ले जाओ सीता को, या फिर उनके लिए ये बनाओ, अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि बनाओ, थोड़ा बहुत। बट बलराम जी के रूप में वो सर्वेंट मूड ज़्यादा है, परित्यान प्रभु के रूप में और बलराम जी के रूप में वो सर्वेंट मूड इतना नहीं है। दैट्स लिटिल, उनका शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, उनके वो उनके स्वभाव के कारण है। मतलब भगवान का विरोध नहीं कर रहे एग्जैक्टली वो, ये समझा प्रभु। इतना सा आधे घास में खत्म हो जाएगा ये। तो फिर आद्विताचार्य बोलते हैं कि क्या है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और जो दे सकता हूँ मैं देने के, मैं तुमको दे रहा, तो तुम संतुष्ट हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा मांग करोगे तो प्रभुपाद कहते हैं यू आर अ रिजेक्ट परमहंस, कि तुम्हें एक ढोंगी परमहंस हो। तो प्रभुपाद, तो फिर तभी आद्विताचार्य नित्यानंद बोलते हैं कि तुमने बुलाया, मैं जितना चाहिए तुमको खिलाना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म है। फिर वो उठाते हैं और उसको फेंक देते हैं नीचे। और फिर जब वो घास का तिनका जाके नित्यानंद प्रभु के हाथ से जाके अद्वाचारों को लगता है, तो अद्वाचार वो नाचने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। बोले एक पागल का उत्तेज स्पर्श होने के कारण मैं भी पागल हो गया हूँ अभी। तो बड़ी दिव्य लीलाएँ हैं। बट पॉइंट यह है कि वो भगवान का एक, एज आई सेड, ही अपोजेज द लॉर्ड एंड प्लीजेज द लॉर्ड, दैट इज इज अमेजिंग क्वालिटी। तो अभी एल है लविंग। तो यद्यपि वो इतने अजीब कार्य करते हैं, फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है। और ये खास करके जब वे वृंदावन में आते हैं, जब भगवान के संदेश वाहक के रूप में जब उनको वृंदावन भेजा जाता है, तब वो जिस तरह से सब ब्रजवासियों से बर्ताव करते हैं, तो उससे दिखाई देता है। वो सबसे उनके कैसे उनको अच्छे है कि नहीं पूछते हैं, नंद महाराज यशोदा माई को सांत्वना करते हैं। और फिर जब खास करके गोपियाँ होती हैं, तो गोपियों को कृष्ण से बड़ा विरह हो रहा होता है। तो फिर वो कृष्ण को कोसने लगती है कि कृष्ण ने हमको वादा किया था आएगा, पर हमको फंसा दिया, और हम गरीब, हम गांव के लड़के हैं इसलिए हम फंस गए, और कृष्ण अभी द्वारका की रानियों के साथ भोग कर रहे हैं। तो तभी बलराम जी सब सुन रहे होते हैं, फिर बाद में बलराम जी अपने भगवान की लव का गुणगान शुरू कर देते हैं, और उससे सब गोपियों का मन संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो वन डेफिनेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन हिज एब्सेंस, कि कृष्ण भावना के पराकाष्ठा तब होती है, जैसे हम कहते हैं लव इन सेपरेशन, मतलब भगवान के अनुपस्थिति में उनके उपस्थिति को महसूस करना, यह कृष्ण भावना कहलाती है। तो इस तरह से वे कृष्ण भावना का अनुभव देते हैं गोपियों को। और आचार्यगण बताते हैं कि भगवान कृष्ण की गोपियाँ है, वैसे ही बलराम जी की भी गोपियाँ है। जब द्विविध आया था तो दोनों कृष्ण बलराम भी वहाँ पे थे, तो दोनों अपनी अपनी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। तो जब बलराम जी वापस गए वृंदावन, तब उन्होंने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की, और जो कृष्ण की गोपियाँ थी, तो उन्होंने भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण बलराम जी कैसे रासलीला कर रहे हैं, यह देख कर उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, और स्मरण से ही वे संतुष्ट हो गई। तो इस तरह से उन्होंने रासलीला अपने गोपियों के साथ की, पर सब गोपियों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया, और सबसे बड़े प्रेम का आदान प्रदान किया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने सबको संतुष्ट किया। तो यद्यपि बलराम जी बाह्य रूप से बड़े अद्भुत कार्य करते हैं और बड़े बलवान हैं, पर फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बड़ा कोमल है और बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। और उनका प्रेम खास करके हम नित्यानंद प्रभु की लीला में देखते हैं, कैसे वह जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। तो फिर गोइंग अहेड, आर इज रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग यानी परिवर्तन करना अच्छा के अच्छे के लिए। तो उनके सबसे अलग अलग लीलाओं में जब कोई भी गलत कार्य करने लगता है तो वो उसका या तो उसको सजा देते हैं या उसको किसी तरह से ठीक कर देते हैं। और ये हम देखते हैं खास करके रोमहर्षण सूत की लीला में। तो ये लीला काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, इसमें कभी कभी समझ नहीं आते, तो इसकी थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए थे तो नैमिषारण्य में पहुँचे और वहाँ पर हज़ारों ऋषिगण वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने रोमहर्षण सूत जो कि व्यासदेव के शिष्य थे उनको चुना था कथा करने के लिए, और वे आसन पर बैठकर कथा कर रहे थे। बलराम जी जब आ गए तब सब ऋषिगण खड़े होकर उन्होंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे बलराम जी परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। पर रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हुए, सोचा कि मैं व्यासासन पर बैठा हूँ, व्यासासन से उठने की ज़रूरत नहीं है। और जब बलराम जी ने सबको प्रणाम स्वीकार किया, जब उन्होंने देखा कि रोमहर्षण सूत उठे नहीं हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं किया है, तो वो विचार करने लग गए। तो अभी ऐसे नहीं है कि भगवान बलराम जी आदर के भूखे, इतने भूखे कि कोई उनको आदर नहीं करता तो उसको मार डालते हैं, पर भगवान चिंतन कर, वास्तव में भगवान को किसी के आदर की ज़रूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यज्ञजनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री। वे कहते हैं कि हे भगवान, आप तो पूर्ण हो, अयम निजलाभ पूर्ण, स्वयं में ही संतुष्ट हो, इसलिए किसी से आपको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मानम जनाद अविदुषः, जो अविदुषः जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो जो आपको मान देते हैं तो करुणे करुणो वृणीते, ये आपकी करुणा है कि वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं तो कभी हम शॉर्ट में कहते हैं हम्बल ओबेसेंसेस, पर वास्तव में क्या है वो, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, कृपया मेरे सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। मतलब जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वो बाध्य नहीं है कि हमारे प्रणाम स्वीकार करे। अगर वो हमारे प्रणाम स्वीकार करता है तो वो उससे हम पर कृपा कर रहा है, खास करके भगवान के लिए लागू होता है ये। तो इसीलिए प्लीज़ एक्सेप्ट से हम किसी को भेंट देते हैं तो भेंट स्वीकार करता है, तो या कोई हम पे कुछ फेवर करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते। तो वैसे हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, भगवान को ज़रूरत भी नहीं है हमारे प्रणाम की, पर वो जब स्वीकार करते हैं तो उससे हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जब अंश अपने पूर्ण को संतुष्ट करता है तो अंश भी संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है। जो भौतिक जीवा बद्ध जीवात्मा है वो खुद का गुणगान सुनना चाहता है, पर खुद का गुणगान सुनने में दो समस्याएं हैं बड़ी। पहले समस्या ये है कि हमारे ज़्यादा गुण होते नहीं है गान करने के लिए गुणगान करेंगे तो कितना गुणगान करेंगे। और दूसरा है जो हमारे गुण हैं वो कभी भी चले जाते हैं, हम अच्छा गा रहे हैं और कभी भूल जाते हैं, अच्छा प्रवचन दे रहे बीच में कुछ याद नहीं रहता है, कुछ मैनेजमेंट कर रहा है सब अच्छा मैनेजमेंट चलता है और एक दिन पूरा केओस हो जाता है। जो भी हमारे गुण हैं वो शाश्वत रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जब हम खुद के गुणगान में आनंद प्राप्त करने जाते हैं तो हम बहुत डिससेटिस्फाइड और इनसिक्योर हो जाते हैं। डिससेटिस्फाइड क्योंकि हमारे ज़्यादा गुण है नहीं, कितना गुणगान करेगा कोई, और इनसिक्योर क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत गुणगान कर रहा है वो भी कब चला जाएगा पता नहीं, तो कोई हमसे अच्छा कार्य कर लेगा तो फिर चला जाएगा। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो खुद के गुणों में आनंद नहीं लेता है, वो भगवान के गुणगान में आनंद लेता है। भगवान के गुण जो है वो अनंत है, तो उनका गुणगान भी अनंत काल समय तक चलता है। और उतना ही नहीं, भगवान के गुण जो है अनंत काल तक उनके साथ रहने वाले हैं, कोई उनसे छीन नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहे हैं कि प्रभु अगर कोई आप अगर आप किसी का प्रणाम स्वीकार करते हो तो ये आपकी उस पर करुणा है, क्योंकि यज्ञजनो भगवते विदधीतमानम, कि जो जन आपको मान देते हैं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री, तो उससे क्या होता है उसी का कल्याण होता है। जैसे जब आईने के सामने कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और खुद को सुशोभित करता है तो आईने में जो प्रतिबिंब है वो अपने आप सुशोभित हो जाता है, वैसे ही जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उसी से हम संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान को किसी के आदर की ज़रूरत नहीं है, पर हमें भगवान को आदर देने की ज़रूरत है। और जब रोमहर्षण सूत ने आदर नहीं दिया भगवान को, तो उससे भगवान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर भगवान दो चीज़ों के विचार कर रहे थे। सबसे पहला कि ये जो व्यक्ति है, ये गर्व उसको हो गया है कि वो आदर नहीं दे रहा है। सोच रहा है कि मैं अभी आसन पर बैठ गया हूँ तो मैं बड़ा महान बन गया, तो वो आदर नहीं दे रहा है, तो ये उसके लिए अनुचित है। और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण था कि ये व्यक्ति जो है, ये अभी एक नेता के स्तर पर है, उसको आदर्श बर्ताव होना चाहिए। कि उसका ऐसे बर्ताव हो जाए कि उसका बर्ताव से सब लोग सीखेंगे कि क्या उचित बर्ताव। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः। तो अगर यह व्यक्ति, उसका उचित व्यवहार नहीं है, तो सब लोगों के लिए गलत आदर्श बन जाएगा वो। और अगर गलत आदर्श बन जाएगा तो सारा जो समाज है वो मिसलीड हो जाएगा, वो गलत गुमराह हो जाएगा। तो इसीलिए दो चीज़ें हैं, ज्ञान और दूसरा है बर्ताव, बिहेवियर, नॉलेज एंड बिहेवियर। तो इन दोनों में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है, पर दोनों में अगर तुलना करें तो हाँ बर्ताव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्त कैसे जानते हैं हम? चैतन्य महापुरुष कहते हैं हाँ, असत संग त्याग है वैष्णव आचार। तो आचार हम भक्त को जानते हैं उसके आचार से, ज्ञान से नहीं। तो ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, पर अगर ज्ञान है और आचार नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को ऊंचे आसन पर दिया जाएगा तो लोग समझेंगे ज्ञान महत्वपूर्ण है, आचार महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जो गलत उदाहरण है, ये सारे समाज में चला जाएगा। तो इस गलत उदाहरण को समाज में न जाए, इसलिए उन्होंने उसको सजा देने का फैसला किया। और अभी सजा देनी है ठीक है, उसको आसन से उतार दो, उसको आदर न दो, पर उसको मार डालने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि भगवान जब कोई कुछ चीज़ सिखाए आते हैं तो वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल से सिखाते हैं, कि ऐसे एग्जाम्पल सिखाते हैं कि हमेशा के लिए याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं उसको। तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ये रोमहर्षण वास्तव में इतना ज़्यादा ज्ञान है, उतना जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तरह से बर्ताव करें। जैसे देवानंद महाराज बोलते हैं, इन वैदिक कल्चर नॉलेज वॉज नोन नॉट बाय नॉलेज वॉज वैल्यूड नॉट फॉर इट्स इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बट फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट। मतलब ज्ञान से सिर्फ इन्फॉर्मेशन, जानकारी बढ़ना नहीं है, ज्ञान जब है तो उससे बर्ताव में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सब 12वें अध्याय में गुण है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच। तो जो भगवान का भक्त है उसका बर्ताव आदर्श होना चाहिए। तो अगर वो आदर्श नहीं है तो सारे समाज के लिए गलत उदाहरण होता है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ये हमें सिखाना है कि नॉलेज इज, इफ समबडी हैज़ नॉलेज बट ही डजंट हैव बिहेवियर, देन दैट इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। और इसीलिए उन्होंने उसको मारने का फैसला किया। और जब मारना भी था तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक तृण लिया और तुरंत से उसको स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया और तुरंत उसका उसका आत्मा उसके शरीर से चला गया, उसका वध हो गया। तो हम देखते हैं कि ये बड़ा ही विचित्र लगती है, पर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब भगवान बहुत ही एक्सट्रीम कार्यों से कोई मैसेज देते हैं हमको। और कोई ऐसे लीला है जब एक्सट्रीम कार्यों से भगवान मैसेज देते हैं? कैसे योगेश प्रभु? हाँ, धोबी को मारने का। यस, पहला कराटे चॉप था वो, ठक कट ऑफ पूरा। तो धोबी को तो तभी भगवान दिखा रहे थे कि भोग सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ मेरा है, तो अगर कोई मुझे देता नहीं है तो उसकी सजा होगी। और कोई? यस, अभी तक सर लक्ष्मण प्रभु, हाँ छोटा हरा था। जैसे बताया जाता है कि वो माधवी देवी वो 90 साल की स्त्री थी, और उनको सिर्फ एक बार देखा उन्होंने, नॉट इवन अ फुल ग्लांस, हाफ ग्लांस, पर फिर भी उन्होंने उनको कहा कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते। इस आनंद चेतन प्रभु, सांब अकेले, बट मतलब क्या एक्सट्रीम एग्जांपल है उसमें, मतलब क्या सिखा रहे हैं उसे? मतलब एक हम उदाहरण ये है, पॉइंट ये है कि कोई चीज़ सिखाने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम कार्य करते हैं भगवान, और वो सिखाते हैं। हाँ, हस्तिनापुर को उठा रहे थे ये डालने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सांब को अरेस्ट किया था। द पॉइंट इज पनिशमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले. हाँ, सो इन वन सेंस दैट इज सम वॉट रीजनेबल. ओके, हम देखते हैं कैसे कि उन्होंने उनके राजकुमार को गैर व्यवहार से गिरफ्तार कर लिया था. 6 योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया था, तो फिर उस पर आक्रमण करना उचित बोल सकते हैं हम इधर से. छोटी सी गलती के लिए बड़ी सजा, ऐसे और कोई उदाहरण है इस प्रेम व्यास रूम? हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है. कौन थे? गोविंद घोष. गोविंद घोष वो हरितक्की रखे थे, तो एक दिन उनको देर हो गई हरितक्की लाने के लिए, तो अगले दिन तुरंत दे दी उन्होंने. तो उन्हें पूछा, कैसे लाई आपने? मैंने रखी थी कल. बोले, तो फिर तुम ऐसे संचयन करना चाहते हो, तुम गृहस्थ बन जाओ. तो भाई हमारा तो अच्छा खासा गोडाउन है. तो फिर यहाँ पे मतलब संचित करने का आपको जो मानसिकता है वो गृहस्थ की मानसिकता है. तो यहाँ पे जो है कि ये एक एक्सट्रीम देख रहे हैं कि छोटी सी गलती के लिए बड़ी सज़ा, और दूसरा हम एक्सट्रीम देखें. और कोई एग्जांपल है इसका? ओके, कलिंग के बट ही वॉज इंसल्टिंग बलराम जी. देखिए, छोटी सी कोई गलती है तो उसके, अभी दूसरा एक्सट्रीम देखेंगे हम कि कोई छोटा सा कार्य करते हैं उसको बहुत कृपा कर देते हैं भगवान. यस, पूतना वो उनको मारने को आई थी, पर उन्होंने देखा कि ये मुझे दूध पिला रही है, उसको भगवत धाम ले गए. वो फल वाली, हाँ, थोड़े से फल दिए उनको. ओके, उन्होंने उनको जेवर दे दिए, पर महत्वपूर्ण सबसे उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम दे दिया. पर और फेमस उदाहरण, छोटा सा उन्होंने कहा, सुदामा, ठीक है, हाँ, तो हाउ इज दैट रिलेटेड? हाँ, वो ताल के वृक्ष थे, उन्होंने उनको भेद दिया, तो भगवान ने याद किया कि ये ताल के वृक्ष मेरी सेवा की थी उन्होंने पिछले अवतार में, चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको आलिंगन करके उद्धार कर दिया. बट लिटिल मोर एक्सट्रीम, किसी ने बहुत पाप किया था पर छोटा सा उसने कुछ सेवा की. मतलब हम क्या एक्सट्रीम देख रहे, उदाहरण देखो कि छोटा सा पाप किया और बहुत सजा, पर दूसरा बहुत पाप किया था पर छोटा सा कुछ पुण्य कर दिया, उसको बहुत कृपा दे दी. यस पार्थमित्र, वो हाँ, यस, छोटा सा उन्होंने साड़ी का एक कपड़ा फाड़ के भगवान को बैंडेज किया था. पनिशमेंट और मर्सी, आई थिंक वन टू मोर एग्जांपल्स, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू गो अहेड. जगाई मदाई, हाँ, थोड़ा सा उन्होंने, मदाई ने क्या किया, जगाई मार रहा था, उन्होंने रोक दिया उसको, तो फिर उन्होंने उसको कृपा दे दी, और फिर बाद में उनको भी कृपा दे दी. फेमस उदाहरण फ्रॉम सिक्स कैंटो, हाँ, अजामिल, एक बार नाम पुकारा और मृत्युपात से बच गए वो. तो मतलब ये दो उदाहरण से हम क्या देख सकते हैं, व्हेन कृष्णा वांट्स टू डू समथिंग, हम कहते हैं कोई छोटी सी कोई सेवा की तो उसको इतना बड़ा फल दे दिया. एक बार नारायण का नाम पुकारा, और वो भी नारायण को बुला नहीं रहे थे, किसको बुला रहे थे? अपने पुत्र को. पर उसको उन्होंने यमदूतों से बचा दिया. फिर वो शास्त्र में उदाहरण वो हराम बोलता है, और सुअर उसको मार रहा होता है तो हराम बोलता है, तो अभी वो तो गाली दे रहा है वास्तव में, पर भगवान से अरे राम का नाम लिया, उसका उद्धार कर दिया. तो मतलब एक ये एक्सट्रीम है कि छोटे से भक्ति के लिए बहुत बड़ा वो भगवान उसको रिवॉर्ड देते हैं, और दूसरा एक्सट्रीम है कि छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ी सजा देते हैं. तो क्या श्लोक होता है भगवान के बारे में? कुसुमादपि कोमलम वज्राद अपि कठोरम. तो भगवान की जो स्वभाव है वो अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करते हैं. तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी हम भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान हम पे कृपा क्यों नहीं करते? ऐसे एक बार नाम ले, हम तो 16 माला जप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है. तो फिर अगर इफ़ यू वांट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मर्सी, देन वी शुड बी रेडी फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पनिशमेंट ऑल्सो, बिकॉज बोथ आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम लॉर्ड. अगर हमको असाधारण कृपा चाहिए तो हम देख सकते दूसरे लीला में भगवान असाधारण सजा भी देते हैं. इसलिए बेहतर है कि हम साधारण साधना भक्ति करें और और हम धीरे धीरे प्रगति करें. वास्तव में कोई साधना भक्ति भी साधारण नहीं है, बट वी डोंट डिमांड एक्स्ट्रॉर्डिनरी मर्सी, क्योंकि द लॉर्ड भगवान दोनों चीज़ें करते हैं. वो असाधारण रूप से सजा भी देते हैं, असाधारण रूप से वो कृपा भी देते हैं. तो ये मैसेज देना चाहते थे कि आचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और आचार अगर उचित नहीं है तो वो व्यक्ति सजा के योग्य हो जाता है. तो इसलिए जो वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव शिष्टाचार, उसको बड़े संभाल के पालन करना चाहिए। कृष्ण स्वामी प्रभु कहते हैं कि अगर कोई भक्त आते हैं और आपको पता नहीं है कौन है, तो इसे जैसे बेटर टू ओवर रिस्पेक्ट देन अंडर रिस्पेक्ट। कोई जानते नहीं है तो ज़्यादा आदर करना अच्छा है कम आदर करने से, ये कम आदर से अपराध हो सकता है, ज़्यादा आदर से कोई अपराध नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सिखाते हैं वे। तो दिस इज रिफॉर्मिंग और इज ऑलमाइटी। वे भी परम पुरुषोत्तम भगवान है और बहुत शक्तिशाली है। हमने काफ़ी लीलाओं की चर्चा की है ऑलरेडी, क्या कहाँ कहाँ वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, कौन सी लीला में। हाँ, सबसे पहले जब पूरे जमाना को उन्होंने फाड़ दिया, बाद में हस्तिनापुर को उठा लिया। वो बलराम जी के दो शस्त्र है, कौन कौन से प्रधान, हल और गदा, या प्लाव एंड गदा, क्लब क्लब। तो वो उन्होंने उसे अपने गदा से पूरा कोई कुछ, अभी भूकंप आता है तो इतना उपद्रव होता था, पर भगवान ने जब वो अपना हल डाला हस्तिनापुर को, जब पूरा हस्तिनापुर को उठा लिया तो भूकंप नहीं, वो तो भू उठ गया पूरा, कुछ रहा ही नहीं वहाँ पे। भूकंप में थोड़ा कांपता है वो, तो वो सब भयभीत हो गए, अरे क्या हो गया। फिर सब कौरव आ गए और सबसे पहले सांब और लक्ष्मण को सामने रखा और बोले क्या आप ले लो उनको, भगवान शांत हो जाओ आप। तो भगवान, तो बलराम जी का एक चीज़ है कि वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं जल्दी से, जब क्रोधित हो जाते हैं तो बहुत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इनफैक्ट बलराम, इस नाम का अर्थ क्या है, हाँ, जो बल के प्रदर्शन में राम लेते हैं, जो आनंद लेते हैं अपने बल का प्रदर्शन करने में। तो और कौन कौन सी लीला है जब वो अपने शक्ति दिखाते हैं, धेनुकासुर, वो इतना विशाल असुर था, वो लात मारने आ गए, भगवान ने उसको पकड़ लिया बलराम जी ने, उसको गोल घुमा दिया। और प्रभुपाद जी बोलते जब गोल घुमा रहा था तभी वो मर गया, और बाद में उसको फेंक दिया। ऐसे बलराम जी भी ऐसे अद्भुत है, कोई लड़के होते हैं और वृक्ष फल चाहिए तो क्या पत्थर से फल को गिराते और खाते, पर बलराम जी ने असुर को पकड़ के फल वो पेड़ को ही गिरा दिया, और पेड़ को गिरा के वो एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, तीसरे पेड़ से चौथा पेड़, और फिर उस असुर भी मर गया, वृक्ष भी गिर गया, और सब गोप फिर फल खाने लग गए। तो इस परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, टू एरोज इन वन, व्हाट, टू बर्ड्स इन वन एरो, एक तीर से दो शिकार। असुर को भी मार डाला और गोपों को भी सेवा कर दी उन्होंने। और कोई लीला है, यस श्री केशव प्रभु, दुविधा को, हाँ, कॉलर बोन उसका तोड़ दिया एक पंच में, कुमार डाले फिर पल्लम्बासुर, हाँ पल्लम्बासुर वो गोपा के रूप में आया था, और फिर वो सोचा कि पहले बलराम को मारूंगा फिर कृष्ण को। तो जब वो हार गए कृष्ण के साइड, तो उन्होंने बलराम को उठा लिया और लेके गए। अब बलराम जी सोचे थे अरे इसको इतना, मेरे इतना दूर क्यों लेके जा रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है ये गोपा। तो फिर अचानक बलराम जी ने देखा, अरे मेरा अच्छा लूना था, अभी ये खटारा जीप कैसे बन गया। ओ, उनका सुंदर गोपा था वो ऐसे बदसूरत राक्षस बन गया। फिर बलराम जी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए योग माया से, फिर बाद में उन्होंने सिर से उसको एक मारा और फिर मर गया। तो वैसे ही हम क्या कहते हैं गुरु पूजा में, जो गुरु है अविद्या विनाश आते, जब गुरु के शब्द होते हैं वो हमारे हृदय में जो धनुका से उसको मार डालते हैं प्रलम्बासुर को। सो और कोई लीला है जब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, द्विविधा आपने बताया, हाँ कलिंगराज का, जो वैसे बताते हैं वहाँ पे कृष्णा बुक में कि जब कलिंगराज को पीटा गया तो उसने सोचा कि आपको उसको प्रतिकार नहीं करना चाहिए तो और पिटाई मिलेगी, पिटाई मिल गई तो वो पिटाई खा के भाग गया, वो प्रतिकार नहीं किया उसने, बाकी सब राजा भी वैसे ही भाग गए। और कोई, हाँ आनंद शेष के रूप में वो ब्रह्मांड का धारण कर रहे हैं पूरा, यस, हाँ इलावल और बलवल, बलवल और एक और था कोई, बलवल और इलवल। तो वो बड़े राक्षस थे और बहुत शक्तिशाली थे, तो वो हवा में उड़ते हुए आ रहा था, तो वो सोचा था कि मैं हवा में उड़ते हुए आऊँगा, तो बलराम जी ने क्या किया, अपनी गदा से ठक उसको पकड़ लिया, उसका पूरा छाती पकड़ लिया, नीचे लाया, एक मार डाला दूसरे गदे से, ख़त्म कर दिया उसको। तो बहुत शक्ति थी। और फिर दूसरे एक और ऐसे बताया जाता है कि जब भीम ने कीचक का वध किया, जो कीचक वो कौन सा राज्य हो, अज्ञातवास में विराट राज्य में थे, तब वो सब मंत्री आ गए और वो कहने लग गए कीचक इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ चार लोग उसकी हत्या कर सकते थे, भीम, शाल्व, कृष्ण और बलराम। तो उस समय के सब योद्धाओं में बलराम जी बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, उससे बहुत शक्तिशाली है वो, और ख़ास करके वो असुरों का नाश करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और लास्ट जो है एम, एम यानी मास्टर, वो हमारे स्वामी हैं, जो गुरु होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बलराम जी, इसे बताया जाता है कि देवकी के पुत्र में 6 पहले शिशु थे, उनको कम से मार डाला, फिर बलराम जी वहाँ पे आए, फिर वे स्थानांतरित हो गए रोहिणी के गर्भ में, और फिर कृष्ण वहाँ पे प्रकट हुए। तो ये जो देवकी के गर्भ में 6 पुत्र थे, वो पहले जो मरीच था, मरीची राक्षस नहीं, मरीच एक ऋषि है, एक देवों में एक व्यक्ति है, तो वो उसके पुत्र थे पहले। और जो मरीच है वो मन का अधिष्ठाता देव है, तो इसलिए मन, मरीच के जो 6 पुत्र है वो मन से उत्पन्न होने वाली 6 वासनाओं से तुलना की गई है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो जब देवकी का गर्भ जो है वो एक साधक के हृदय के समान है, तो सबसे पहले जो 6 अनर्थ है वो नष्ट हो जाना चाहिए। अब 6 अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तभी काम पूरा नहीं हुआ है, तब उसके बाद में गुरु उस हृदय में प्रकट होते हैं, और जब गुरु उस हृदय में प्रकट होते हैं वो बलराम जी है, और फिर उस हृदय में प्रकट होकर वो सब हृदय को साफ करते हैं, और हृदय को साफ करने के बाद जब हृदय उचित हो जाता है स्थान भगवान के प्रवेश के लिए, तो फिर वहाँ पे बलराम भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए ये बलराम जी है एक्चुअली सबसे पहले जब हमारे अनर्थ है, हमारे हृदय से अनर्थ चले जाते हैं, फिर गुरु के प्रति बहुत ही सुदृढ़ आसक्ति आ जाती है, और फिर वो गुरु के प्रति जो आसक्ति है उस वो आसक्ति भगवान के प्रति आसक्ति में परिवर्तित होती है। तो इसलिए बलराम जी गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम का एक और अर्थ है बल राम, तो बल यानी शक्ति और राम यानी आनंद। तो बलराम जी जो है, उनके जो प्रतिनिधि है गुरु, वो हमको बल देते हैं कि माया के जो टेम्पटेशंस है, माया के प्रलोभन है, उसको ना बोल सके। जब माया प्रपोज करती है तो इतना तेजी से प्रपोज करते हैं कि हम ना बोल नहीं पाते उसको। सो बलराम जी गिव्स अ स्ट्रेंथ टू से नो टू माया, तो वो बल देते हैं। और राम यानी जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो बलराम जी हमको उस सेवा में आनंद देते हैं, राम देते हैं, और उससे हम भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं। तो ये दोनों कार्य करते हैं, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, बलराम जी दोनों करते हैं। वे हमें माया को ना बोलने के लिए बल देते हैं, और कृष्ण को हाँ बोलने के लिए उसमें कृष्ण की सेवा में राम देते हैं, आनंद देते हैं। तो इसलिए जब बलराम जी के समय, बलराम जयंती के समय प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कैसे कि हमारा कोई विशेष अनर्थ है जो हमको नहीं बोलने के लिए शक्ति नहीं मिल रही है, तो उसको उसमें हमें शक्ति दे, प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई भक्ति का अंग है जिसमें हमें रुचि नहीं मिल रही है, तो उसमें रुचि मिले, उसमें आनंद मिले, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब बलराम जी का एक और जो शस्त्र है वो है, एक और नहीं, शस्त्र जो है वो गदा, सॉरी प्लाव, हल। तो हल से क्या करते हैं, हल से हम खेती को जोतते हैं। तो जो साधक का हृदय है वो खेती के समान है, और जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस है वो बलराम जी के हल के समान है। सो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर प्लाव द हार्ट ऑफ द डिसाइपल, एंड ओनली व्हेन द हार्ट इज प्लोन कैन ग्रेन्स ग्रो ओवर देयर। आई स्पीक इन इंग्लिश, इट इज ओनली फ्रॉम ब्रोकन क्लाउड्स दैट रेन्स कम, इट इज ओनली फ्रॉम ब्रोकन सॉइल दैट ग्रेन्स कम, इट इज ओनली फ्रॉम ब्रोकन ग्रेन्स दैट ब्रेड कम्स, इट इज ओनली फ्रॉम ब्रोकन ब्रेड दैट नरिशमेंट कम्स, एंड इट इज ओनली इन अ ब्रोकन हार्ट दैट डिवोशन इज मैनिफेस्ट। तो ये जो है भगवान जो टूटे हुए चीज़ों का इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है, जब बादल फूटते हैं तभी उनसे बारिश आती है, जब ज़मीन अच्छी दिखती है तो उसमें से कोई उपजाऊ नहीं होता है, ज़मीन को हल से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, तब उसे अनाज आते हैं। वैसे जब अनाज होता है, अनाज पूरा होल रहता है उसके सील के साथ, तो उसे कुछ बना नहीं सकते, जब वो अनाज को ग्राइंड करते हैं तो तभी उससे फ्रॉम ब्रोकन ग्रेन्स ओनली ब्रेड कम्स, उससे ही आटा बनता है, उससे ब्रेड या चपाती बन सकती है, और चपाती भी गोल अच्छी लगती है, पर उसको तोड़ के खाना पड़ता है, तभी उससे हमको संतुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है। तो वैसे ही जो हृदय होता है, अगर वो हृदय हमारे ही खुद की इच्छाओं, योजनाओं, वासनाओं से भरा हुआ है, फुल है, तो फिर भगवान हमें प्रवेश नहीं करते। सो दैट हार्ट विच इज़ फिल्ड विथ वन्स ओन इंडिपेंडेंट डिजायर्स एंड प्लान, दैट इज ब्रोकन अपार्ट बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, बाय द प्लाव ऑफ बलराम। जब हृदय तोड़ दिया जाता है तो फिर उसके बाद में वहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब मिथिला नरेश जनक महाराज वो खेती कर रहे थे, तब वहाँ से कौन प्रकट हुए? सीता माता प्रकट हुए। वैसे ही जब बलराम जी के हल से वहाँ पे भक्ति प्रकट होती है, और जब भक्ति प्रकट हो जाती है तो भक्ति जब शुद्ध हो जाती है, शुद्ध भक्ति जब होती है तो उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे बता दें कि जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जब तक हम साधना भक्ति के स्तर पर है तब तक वी आर इन द कंट्रोल ऑफ बलराम, और जब हम साधना भक्ति से रागानुभव भक्ति में चले जाते हैं तब बलराम जी हैंड्स इज ओवर टू राधा रानी। तो तभी हम अंतरंग शक्ति में चले गए। तो गुरु जो है, जब तक हम बहिरंग शक्ति में हैं तो हमको मार्गदर्शन करते हैं कैसे हम भक्ति करने हैं, और जब हम पूरी तरह से रागानुख स्तर पर चले जाते हैं तो राधा रानी हमें मार्गदर्शन करती हैं। तो गुरु के उपदेश से ही हमारे हृदय जोता जाता है, वहाँ पर भक्ति प्रकट होती है, भक्ति के बाद में वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से बलराम जी को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें शक्ति दे कि हम भी भक्ति में स्थित हो जाए और माया के प्रलोभन को ना बोल सकें। सो एनी कॉमेंट्स फ्रॉम शिवन प्रभु, लाइक टू ऐड समथिंग? श्याम रूप प्रभु, लाइक टू ऐड समथिंग? गौलीदा प्रभु, श्री बलराम जी की, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी।